कम कर रही है, नॉन स्टॉप 80 साल की उम्र में तो राउंड द क्लॉक रात और दिन सो रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, गुस्सा कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, हर वक्त वो पंप चालू है, उसकी हरकत ही जिंदगी है। उसके रुक जाने के इम्कान बहुत है, उसका हरकत में रहना ये ताज्जुब की चीज है। ऐसा पुरजान एक नाजुक लोथड़ा गोश का है, ऐसे जितना स्टील जितना मजबूत मटेरियल नहीं है, वो एक नाजुक लोथड़ा है गोश का नरम, और वो कंटिन्यूस कितने साल से पंप कर रहा है। एक एक ऑर्गन्स किडनी है उसमें 20,000 स्क्रीन है, कितनी है 20,000 स्क्रीन एक किडनी में है, 24/7 राउंड द क्लॉक स्क्रीनिंग करती रहती है, जिसमें से सारी तकलीफ देने वाली चीज को पेशाब के रास्ते से निकालती है, सारे कचरे को साफ करती है। काम करना बंद करते हो तो यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिन बढ़ गया, वॉमिटिंग सेशन हो रही है, ग्राउंड हो रही है, बेचैनी हो रही है, जिसमें सूजन आ रही है, डायलिसिस कराओ। जो काम किडनी कर रही है पेशाब बनाने का, अब आर्टिफिशियली डॉक्टर के चक्कर खाओ, कितने पैसे खर्चो, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करो, कितना वक्त बर्बाद करो, तो एक वक्त का पेशाब का काम हो गया, टाइम के लिए नहीं, डायलिसिस से काम हो गया। रोजाना अल्लाह सुबहान तआला ने इस पुर्जे को काम में लगाया, 24 घंटे ये पुर्जे हमारे जिसमें से कचरे को निकाल रहे हैं, ये सारी नियामतें हैं। आंख में 6,000 ग्राफिक्स बनते हैं, एक ग्लांस BMW ले ले, मर्सिडीज कार ले ले, आदमी 1 करोड़ की गाड़ी लेकर आ रहे, उसका मिरर कितने साल चलेगा, उसका कांच कितने साल चलेगा, रोजाना सफाई करनी पड़ती, धुंधला हो जाएगा, स्क्रैच पड़ जाएंगे, धूप और बारिश की और ठंडी की इफेक्ट उसमें होगी, और ये आँख ये पैदा हुआ जब से देख रही है और एक जमाना हो गया, सारा साल से धूप में भी, बारिश में भी, ठंडी में भी इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऊपर ये भौवें बनाए, इसमें बाल उगा दिए, जरा सी कोई चीज़ आती है तो इतना ऑटोमाइजेशन है कि बगैर कोई ऑर्डर के फौरन आग बन जाएगी, आंगली लेके जाए फौरन आग बन जाएगी, कोई कीड़ा मकोड़ा तो उसके लिए हिफाजत के लिए आगे बाल अली का। अल्लाह सुबहान तआला ने अपनी कुदरत कामिला को इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में बनाने में इस्तेमाल किया है। ऐसे डिजाइन किए इसका हाथ बनाया, ऐसा मल्टीपर्पज वेपन है ये दुनिया के हर तबके को काम लगता है। हाथ के अंदर जॉइंट्स तो दिए ना, कॉनी में जॉइंट्स दिए हैं, उंगलियाँ बनाए उंगलियों में जॉइंट्स दिए हैं, उंगलियों में कोरों में जॉइंट्स ना होते तो उंगलियाँ सीधी रहती है, तो क्या काम हो सकता है, मूर्ति नहीं है, कॉनी की मूर्ति यहाँ से आज सीधा के सीधा ये क्या कर सकता है, मैं तुमको खिलाऊँ तो मुझे खिलाऊँ, खाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ती है, आदमी को तलाश करना पड़ता है, मिल जाएगा खिला मुझे, फिर खाना भी आदमी खावे तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे के पेट में कोई मुजिर नुकसानदेह चीज न जावे इसलिए सिक्योरिटी की बॉर्डर लगा दी, 3-3 सिक्योरिटी, पहले तो आँख देख लेती है कि खाना खराब तो नहीं है, इसमें कचरा तो नहीं है, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं पड़ा है, आँख के सिक्योरिटी ने पास कर दिया कि खाने के काबिल अच्छा है, उठा लिया तो फिर जैसे लुकमा मुँह के पास गया तो नाक में सूंघने की ताकत रखी, तो फौरन नाक के लिए बदबू आ रही है, खाने के काबिल नहीं है, तो नाक के सिक्योरिटी से पास हो गया तो जुबान पे ऐसे अल्लाह सुबहान तआला का सेंसर रखे हैं कि रखते ही इसका जायका पता चलता है, थूक देता आदमी क्यों ढुका के खराब है, इसका जायका बदला हुआ है, बिगड़ गया है, ताकि नुकसान देने वाली चीज इसके जिस्म में ना चली जाए। अभी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के एतबार से हर अहम जगह के ऊपर फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा आँख की स्कैनिंग की जाती है। एयरपोर्ट पे सारे मुल्कों की इमिग्रेशन में अक्सर देखा जाओ तो आदमी खड़े रख के आँख का एक्सरे निकाला जाता है। तो आँख कितनी पुतली है, दुनिया में जितनी इंसानियत है 500-600 करोड़ आदमी की आँख दो आदमी की आँख के डिजाइन एक सर की नहीं है। कितना एरिया है, एक इंच डायमीटर का भी नहीं है। एक आदमी की आँख एक इंच डायमीटर की भी नहीं है, उससे भी छोटी है। इतने में कितनी डिजाइन अल्लाह ने बनाई, 500-600 करोड़ डिजाइन इतने में हैं, दो डिजाइने मिलती नहीं है। फिंगरप्रिंट कभी धोखा खा जाए, लेकिन इस जमाने के साइंटिस्ट का दावा है कि दुनिया की किसी आदमी की आँख की फिगर दो की एक जैसी नहीं है। इसके ज़्यादा सिक्योरिटी के एतबार से भी फिंगरप्रिंट भी नहीं लेते, आँख का एक्सरे लेते। इतनी ज़बरदस्त अल्लाह की कुदरत है, कोई दुनिया का कारीगर कर सकता है, आर्किटेक्ट डिजाइन बना सकता है, इतनी आँख के अंदर कितनी डिजाइन बनाएगा। 100, 50, 200, 500, 1,000, 1,000,000 फिर वो कॉमन हो जाएगी, एक चीज दूसरे मिल खाती हो जाएगी, करोड़ों के करोड़ों हो गई। लेकिन इतने डायरे के अंदर इतनी डिजाइन अल्लाह ने बनाई है कि दो की एक चीज मिल, ये अल्लाह की कुदरत है। उस खालिक और मालिक ने इस बात का फैसला किया है इस दुनिया को हमें फना करना है, इस दुनिया को हमें फना करना है, इसके परमानेंट बाकी। और इंसान को कि इंसान को हमेशा बाकी रखना है। इंसान को, इंसान और जिन्नात ये दो मखलूक ऐसी है जिसको अल्लाह फना नहीं करेगा। इंसान का जिस्म फना हो जाएगा, जिस्म खाक की है खाक में मिल जाएगा, रूह आफाक की आफाक में चली जाएगी। इंसान अंदर की रूह का नाम है, जिस्म का नाम नहीं है। जिसम तो माँ के पेट में बना है और अल्लाह ने आलम अरवा से रूह को डाला है। अब इस रूह को इस किराए के मकान में डाला है और ये किराए के मकान में डालकर इसको अल्लाह सुभान व तआला ने कुछ हुक्म दिए हैं कि ये आँख तुमको दी है इस्तेमाल के लिए, इसे क्या देखना और क्या नहीं देखना। जबान दी है बोलने के लिए, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। कान दिए हैं सुनने के लिए, भाड़े से दिए हैं टेम्पररी दिए हैं, तुम्हारी मिलकत नहीं है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। इस कान में क्या सुनना और क्या नहीं सुनना। हाथ पैर दिए हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। माल देंगे अमानत के तौर पर, दुनिया में कोई मालदार नहीं है, दुनिया में सारे चौकीदार हैं। माल को देकर माल के अहकाम दिए हैं, माल देकर आज़ादी किया कि तुम चाहे वहाँ से कमाओ चाहे वहाँ खर्च करो, तुम्हारी मेहनत कोशिश से तुम्हें माल नहीं मिलता, अल्लाह की तरफ से मुकद्दर से मिलता है, अल्लाह ने तय करा है। आदमी चाहे जितनी हर आदमी चाहे कोशिश करता है कि मैं मालदार बन जाऊँ, मैं कमा लूँ तो अभी कमा सकता, अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में लिखा है उसको असबाब भी मुहैया करते हैं और जो कोशिश करता है उस कोशिश में अल्लाह कामयाब भी करते हैं, इसलिए कि इसको देना तय किया है। और जिसको देना तय नहीं किया वो कि जितनी मेहनत कोशिश करता है इतना वो क्यों नाकामी होता चला जाता है, परेशान हो जाता है, मायूस हो जाता है। सारी तदबीरें सारी कोशिशें, हालांकि बहुत होशियार आदमी है, मेहनतों आदमी है, चालाक आदमी है, सारी अपनी सलाहियत लगा रहा है, नतीजे में मायूस हो जाता है। एक आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इससे बात करने से पता चलता है कि इसमें ज़्यादा कोई समझ भी नहीं है, लेकिन जो हाथ डालता है वो कि मट्टी में हाथ मारता सोना बन गया। कि कैसे हुआ, कि इसकी होशियारी चालाकी से नहीं हुआ, अल्लाह के फैसले से हुआ, अल्लाह ने तय किया इसको माल देने का। तो माल देने के साथ अल्लाह सुभान व तआला ने उसके अहकाम दिए हैं कि माल हमने दिया है इसको कहाँ खर्च करना है। किसी ट्रस्ट का तुम्हें ट्रेजरर बना दिया, खजांची बना दिया, तो खजांची बनाने के साथ वो बंधारण में तय करेंगे कि माल कहाँ लगेगा। मस्जिद के खजांची बनाया तो तय करेंगे कि भाई इसमें से इमाम की पगार देनी है, मस्जिद की पगार देनी है, और लाइट का बिल देना है, पानी का इंतजाम करना है, उसके खर्चे नक्की है। माल तुम्हारी मिलकत का नहीं है, तुम्हें दिया है इसके इंतजाम के लिए दिया है। ऐसे अल्लाह सुभान व तआला ने माल देकर इसकी इसकी जगह बताई, मसरफ की कहाँ खर्च करना है। अपनी जात के लिए ज़रूरत के बकदर, और इससे जितना ज़्यादा है वो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर, अल्लाह के बताए हुक्मों पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताए तरीके पर खर्च करना, ये तुम्हारे लिए बड़ी नियामत बनेगी। माल माल बड़ी नियामत बनेगी। और इस माल में खयानत की, इस माल के जरिए से मनचाही पूरी की, फाइसातें पूरी की, नाफरमानी भी इस्तेमाल किया, तो ये माल तुम्हारे लिए बवाले जान बन जाएगा। दुनिया में इसी के जरिए से तुम परेशान होंगे, बेचैन होंगे, मुसीबतों में पड़ोगे, और आखिरत में इसके बदले में अजाब मिलेगा। ये अल्लाह का जाब्ता है, जाब्ता खुदावंदी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ऐसे अल्लाह का जाब्ता है कि इंसान को फना नहीं है, कोई चाहकर भी फना नहीं हो सकता। क्यों? तो अल्लाह सुभान व तआला रूह को अपने पास बुला लेंगे, जिस्म तो फना हो जाएगा, रूह को फना नहीं है। और एहसासात और फीलिंग्स जो है वो इंसान का जिस्म नहीं करता, रूह करती है। खुशी कौन महसूस करता है? जिस्म करता है। मरने के बाद जिस्म बाकी होता है, उसको क्या खुशी होती है और उसको क्या गम होता है? क्यों? अंदर की रूह महसूस करती है, खुशी भी, गम भी, और बेचैनी, परेशानी भी, कामयाबी भी, नाकामी भी, राहत, चैन, सुकून भी, तकलीफ, परेशानी भी, ये सारे एहसास किसको होते हैं? रूह को होते हैं। इंसान रूह का नाम है, जिस्म का नाम नहीं। जिस्म से रूह निकल गई, अब जिस्म से रूह निकल गई तो जिस्म को मैयत कहते हैं, इंसान नहीं कहते। इकबाल भाई चले गए, शीर भाई चले गए, अताब भाई चले गए, इंतकाल हो गया, तो अब लोग कहेंगे मैयत को कब उठाओगे? इकबाल भाई को कहेंगे मैयत की नमाज कब होगी, मैयत को कब दफनाएंगे? तो वो तो चले गए आसमान हो गए, अल्लाह ने बुला लिया उनको वापस। जिस कुदरत से माँ के पेट के अंदर रूह को डाला था, उसी कुदरत से दोबारा अल्लाह सुभान व तआला कब्र में रूह को लौटाएंगे। वो कादर मुतलक है। जला के राख बना दो या दफन करके मट्टी बना दो, अल्लाह सुभान व तआला कुदरत वाले हैं। जिस कुदरत से माँ के पेट के अंदर जिस्म बनाया है, अपनी कुदरत से दोबारा इस जिस्म बनाएंगे, उसमें रूह को डाला जाएगा, और फिर हमें यह अमल मिसाल हजरत खैर यरा व हमें यह अमल मिसाल हजरत शर, जर्रे के बराबर खैर की है तो इसका बदला भी आदमी को भुगतना है, जर्रे के बराबर शर और बुराई की है तो इसका बदला भी भुगतना है। ये जापता है, इसको कोई बदल नहीं सकता। दुनिया की सारी नियामतें इंसान के लिए बनाई है, और इंसान को अल्लाह सुभान व तआला ने आखिरत के लिए पैदा किया है। जितना इंतजाम इंसान के लिए किए हैं, किसी और मखलूक के लिए नहीं किए। क्यों? तो इंसान के लिए दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है। तो बड़े बड़े जानवर बनाए, हाथी कितना ताकतवर है, तो हाथी इंसान से काम लेता है, इंसान हाथी से काम लेता है, ताकतवर तो हाथी है, इंसान तो बहुत कमजोर है उसके मुकाबले में। लेकिन अल्लाह ताला ने सारी मसलूक को मुसख़्ख़र कर दिया, तुम्हारे ताबे कर दिया, तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। घोड़े से तुम काम लो, हाथी से तुम काम लो, बैल से तुम काम लो, भैंस और बड़े बड़े जानवरों से तुम काम लो। चूंकि तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है तो इसको ताकत भी ज़्यादा चाहिए, ताकत में होगा तो खिदमत कर सकेगा। तो ताकत अल्लाह ने ज़्यादा दी जानवरों को, ताकत ज़्यादा दी, और उसकी ताकत हासिल करने के लिए कोई महंगी मुरक्कब गिज़ा नहीं बनाई। इंसान को ताकतवर बनने के लिए बादाम पिस्ते खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, महंगी महंगी चीज़ें, और बैल को ताकत के लिए बादाम खाने के लिए कोई खिलाता? कोई खिलाता है? क्या आपका समझते नहीं बात? तो खिलाता कोई बता? ये मिला था उसको, इसको ताकत ज्यादा चाहिए इंसान के मुकाबले में। इंसान का काम करना है, इसकी खेती करना है, इसके वजन को लेकर चलना है, घोड़े को सवार करना है, दूध को लेकर भागना है, हाथी से बड़े वजनदार चीजें उठानी है, तो उसको ताकत चाहिए। तो उसको महंगी की जाए खिला, कोई खिला था उसको? कोई नहीं खिला था। तो अल्लाह ने मामूली घास फूस के अंदर ताकत रख दी, मामूली चीजों के अंदर उसके लिए ताकत रख दी, ताकि मेरे बंदे की खिदमत कर सके और बंदे पर इसको पालना बोझ ना बने और इसके पकाने को इंसान का पकाना कितना बदल है। अपने बच्चे के पकाने को भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जानवर का पकाने ऐसा बना दे तो अल्लाह क्या रखना मुश्किल हो जाता। बकरी है, गाय है, भैंस है, उसका पकाना इंसान जैसा बदबूदार होता और मुझे नुकसान वाला होता तो कोई रखता घर पर? तो नहीं, मेरे बंदों की खिदमत के लिए बनाया है, इनको दूध इससे मिलेगा, इसका गोश्त खाएंगे, तो इसके पकाने को भी ये नशे की चीज़ बना देंगे, इसके अंदर बदबू भी नहीं, उसको इंसान का रखा, तो इसको रखना भी आसान। बेशुमार नेमतें अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने बंदों पर की है और अल्लाह ताला ने इस सारी मखलूक को अल्लाह ने मुशक्कर कर दिया। सूरज को बनाया, बेजान मखलूक, इससे कितना फायदा इंसान उठाते हैं, पहाड़ों से कितना फायदा उठा रहे हैं, नदियों से कितना फायदा उठा रहे हैं, जमीन से कितना फायदा उठा रहे हैं, दरख्तों से कितना फायदा उठा रहे हैं। एक दरख्त साया भी देता है, फूल भी देता है, फल भी देता है और फिर यसूम के आने के बाद उसकी लकड़ी भी किस्मा किस्म के उठा देता है। एक एक मखलूक को अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान के नफे के लिए बनाए, फायदे के लिए बनाए और इंसान को ये बड़ी बड़ी मखलूक को अल्लाह सुब्हान व तआला ने जबान दे दी, वरना स्ट्राइक करता था, आधी रात को जाकर घोड़े के पास तो मना करता हो कि थका हो, अभी तो मेरा मूड नहीं है, ये तो रात का वक्त है, सुबह जाएंगे, रात को मालिक तो रात को खड़ा कर जा रहा है, सब प्यास लगी है, भूख लगी है, कोई शिकायत नहीं, मालिक खिलाएगा तो पी लेंगे, खिलाएगा तो खा लेंगे, वरना भूख के प्यास से दौड़ता रहेगा, भूख जाता है नहीं चलूँगा, खाना खिलाओ पहले, भूख लगी है, प्यास लगी है, अभी आगे नहीं चलूँगा, करता कोई जाना रहता। इतनी रियायत की अपने बंदों की खिदमत की कि मसलों को तो शक्कर कर दिया, दावे कर दिया कि जैसे तुम इसके मालिक हो और तुम्हारी इताअत फरमा बरदारी में है, कोई चू चरा नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तुम खिलाओ तो खावे, तुम खिलाओ तो पिए और जैसे तुम इस्तेमाल करो, जहाँ तुम ले जाओ वहाँ जाता है, ऐसे तुम्हारा भी कोई खालिक और मालिक नहीं, तुम्हें भी किसी ने बनाया है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान को गैर फानी बनाया है। सबसे बड़ा मसला है इंसान के नज़दीक है, जिसे और जानवर की तरह ये फना हो जाने वाला होता तो मसला नहीं था, चूप हो गई, भूल हो गई, फना हो गया, घर की मिट्टी बन गई, मामला खत्म हो गया, क्या ऐसा नहीं है। इसलिए कल कयामत के दिन अल्लाह की नाफरमानी के साथ ज़िंदगी बसर करने वाले इस बात की तमन्ना करेंगे, या लैतनी कुंतु तुराबा, काश हम भी आज मट्टी बना दिए जाते। किसको मट्टी बना दिया जाएगा कयामत में? जानवरों को मट्टी बना दिया जाएगा, तो खुद इस बात की तमन्ना करेगा, काश में दुनिया में इंसान ना होता, जानवर होता। आज किसी को जानवर को तो बर्दाश्त करेगा है? किसी को जानवर को तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये खुद इसकी तमन्ना करेगा, नाफरमानी दुनिया जिंदगी बसर करने वाला, कल कयामत के काश इंसान ना होता, मैं जानवर होता, क्या ये मामला खत्म हो जाता, ऐसा किताब में पट्टी बना दिए जाते, जजा और सजा का मामला ही नहीं होता, अजाब का और नियामतों का कोई मामला ही नहीं होता। तो जन्नत और जहन्नम ये इंसान के लिए बनाई है और आखिरत में सजा और जजा का मामला इंसान के लिए। इसलिए इस दुनिया को कहा, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए दुनिया सीजनल मोमिन,
حدیث پاک میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, جنت الکافر کافر کے لیے جنت. چاہے جتنی نافرمانی کرو, چاہے جتنی منمانی کرو, تمہیں یہاں عذاب نہیں دیا جائے گا, تمہارے لیے اللہ نے جنت طے کر دی ہے. اس کو چند سال کی زندگی, اس میں تم جو چاہے کر لو, منمانی ساری پوری ہو جائے گی. سکرات کے ساتھ ہی عذاب شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور مومن کو قید خانہ کہا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. سرکار دنیا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, دنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. تو قید خانے میں کپڑے ملتے نہیں ملتے, قیدیوں کو کپڑے دیتے نہیں دیتے بھائی, ہیں دیتے نہیں, لیکن اپنی مرضی کے نہیں ہوتے ہیں. اپنی مرضی کے کھانا ملتا ہے, لیکن اپنی مرضی کا کھانے کا وقت بھی اپنی مرضی کا نہیں, کھانے کی کوالٹی بھی اپنی مرضی کی نہیں, کھانے کی کوانٹیٹی بھی اپنی مرضی کی نہیں. کھانے کی کوانٹیٹی مقدار بھی اپنی مرضی کی نہیں. جو طے کیے اتنے ایک بار کی اتنا ملے گا, تو پوری ملے گی, اتنی سبزی ملے گی, اتنا ہی ملے گا, اس سے زیادہ نہیں. اور کوالٹی بھی اپنی مرضی کی نہیں. کہ بھجیے کھانے کا من ہوتا تو بھجی بنا دیں گے, نہیں جو میں نے طے کیا وہی ملے گا. اور ابھی کھانے کا من نہیں ہو رہا, جوہر کے بعد کھاؤں گا, 3 بجے کھاؤں گا, 4 بجے کھاؤں گا, تو چلے گا. کہ وقت پہ ملا لے لو, ورنہ بھوکے رہو گے. کھانا ملے گا اپنی مرضی کا نہیں, ذائقہ اپنی مرضی کا نہیں. اس لیے اللہ نے دنیا میں مسلمان کے لیے بہت سی چیزیں حرام کر دی ہیں, تمہاری مرضی سے نہیں کھا سکتے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں تعلیم دی مقدار کے اعتبار سے, کھانا اتنا مت کھاؤ, ایک تہائی بھوک کا کھانا کھاؤ, ایک تہائی پیٹ کا, ون تھرڈ. ڈاکٹر سے ہمارا مذاکرہ ہوا تو کہا ہمارے پروفیسر نے ہمیں تعلیم کے وقت میں یہ بتایا تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے میڈیکل کالج کا, اس کو کیا مٹھی بند کرو, اس طرح دو ہاتھ بناؤ, دو ہاتھ بنا کے جتنا یہ کھلا سکتے ہیں, یہ ہر انسان کی ہوجڑی اس کے ہاتھ کے پنجوں کی سائز کی ہے. اتنی اس میں جتنا جتنی گیپ ہے, جتنی جگہ ہے, اتنی اس کی ہوجڑی کی سائز ہے, اور اتنا اس کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ جتنا کھانا ہے وہ اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے. ہر آدمی کی سائز, کہ اتنی سائز کے اندر جتنا کھانا آتا ہے, اتنا کھانا تو اس کے لیے نفے والا ہے, اور اس سے زیادہ نقصان دہ. تو اس کو پابند کیا ہے, لباس کا پابند, کھانے کا پابند, اور کھانے کی کوالٹی کا پابند. قید خانے میں ہے, آزاد نہیں ہے. کھانے میں جو چائے پی لیا, جو چائے کھا لیا, جو چائے پہن لیا, کہ قیدی کیسا رہا. تو دنیا میں آزاد رہا تو آخرت کا قیدی بنے گا, اور دنیا میں قیدی بن کے زندگی بسر کی تو آخرت میں کہ آزادی, ایسی آزادی جس آزادی کا کسی کو تصور ہی نہیں ہے. ایسی آزادی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, کبھی کوئی موت نہیں, ہمیشہ کی خوشی, کبھی کوئی غم نہیں, ہمیشہ کا امن, کبھی خوف نہیں, خوف کا سائبہ بھی نہیں, ہمیشہ کی خوشی, کبھی غم نہیں, ہمیشہ کی جوانی, کبھی بڑھاپا نہیں, ہمیشہ کی تندرستی, کبھی بیماری نہیں. وہ نعمتیں دنیا میں کسی بادشاہ کو بھی نہیں ملی, پوری دنیا کے بادشاہ جو گزرے ہیں ان کو بھی نہیں ملی. وہ نعمتیں اللہ نے جنت میں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں. تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. چند سالہ زندگی ہے, یہ بطور امتحان کی دی گئی ہے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, اس کو گزرگاہ کہا ہے.